તારીખ 15/3/1994 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 449 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 64
और आत्म कल्याण में अग्रेसर होने के लिए अल्प आरंभ, अल्प परिभ्रम, समय न मिले इसके लिए, वरना समय नहीं मिलता है। ये आदि जो साधन है, इस प्रकार के साधन को विशेष रूप से ग्रहण करना चाहिए। आत्मा का जो स्वरूप है, मूल तत्व है, मूल स्वभाव है, उसमें ऐसा कोई भी प्रकार नहीं है, कारण नहीं है, गुण नहीं है, धर्म नहीं है कि जिसमें जिससे उसको जन्म मरण और भव भवांतर हो गए। इस संसार में जीव 84 लाख योनि में पैदा होता है और मरण करता है, पैदा होता है और मरण करता है। यही जन्म मरण का चक्कर अनिवार्य रूप से चलता है। इसमें किसी बुद्धिमान जीव को, विचारवान जीव को ऐसा विचार आता है कि इसको कैसे मिटाया जाए। उस मिटाने के लिए ज्ञानी उसको उतना ही कहते हैं कि तुम मूल में कौन हो, नोट आई सेल्फ, अपने मूल स्वरूप को तुम पहचान, तो सुख के लिए क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है इसका निर्णय हो पाएगा। व्यावहारिक जीवन में भी जहाँ तक हमको हमारा निश्चय नहीं होता है कि हम कौन है, वहाँ तक हमको कौन सी ड्यूटी करना है वो भी हम निर्धारण नहीं कर सकते। तो हम भी आत्मा है, जीव है, जीते हैं, तो हमारा मूल स्वरूप कैसा है तो हमें जानना जरूरी है। इसके जाने बिना हमारे सुख दुख के लिए हमारा क्या कर्तव्य है और हमारा क्या अकर्तव्य है इसका निर्धारण नहीं हो सकता है। उस सुख को, उसी को ही आत्मज्ञान कहते हैं। अपना मूल स्वरूप, आत्मा का मूल स्वरूप जानना, उसी को ही आत्मज्ञान कहते हैं। और यही आत्मज्ञान जन्म मरण से लेकर के सभी प्रकार के दुख का नाश का कारण है, दुख के अभाव का ये कारण है। इस बात को केंद्र स्थान में रख करके हमारे शास्त्रों में सभी प्रकार का उपदेश चला है। कल जो बात चली स्वाध्याय में, उसमें भी यही चली बात कि आत्मस्वरूप का विचार करने के लिए, निर्णय करने के लिए, पहचान करने के लिए कौन से प्रकार के हमारे भाव हैं जो सही निर्णय नहीं हमने देता है, तो उसमें 3 प्रकार के भाव के विस्तार से चर्चा चली चुका गया है कि जो लोक संज्ञा के परिणाम है, उपसंज्ञा के परिणाम है और असत्संग की रुचि वाले परिणाम है। यही हमें हमारा आत्मस्वरूप का सही पहचान करने नहीं देता। लोक संज्ञा के परिणाम ऐसे हैं कि इस समाज में, इस संसार में हमारा कोई स्थान है, उस स्थान को हम इस तरह से पकड़ करके बैठ गए हैं कि ऐसे ही हम हैं, हम जो कुछ है वो ऐसे ही है, कुछ कल्पना करके बैठ गए हैं। और उसी कल्पना के दौरान हमारे सभी प्रकार के कार्य की प्रवृत्ति चलती रहती है। वो गलत निश्चय है हमारा हमारे विषय में मिसकॉन्सेप्ट है, ये छूटे बिना सही निर्णय सही पहचान नहीं आती है। तो मूल स्वरूप क्या है इसकी खोज में जाना पड़ता है, और इसकी खोज में जाने से पहले हमारा जो गलत निर्धारण है उसको हमें गीला कर देना पड़ता है। ये पकड़ करके बैठेंगे कि पूर्वग्रह है तो हमारा जो विचार है थिंकिंग है वो तो उसी पूर्वग्रह के अनुसार प्रेजुडाइज माइंड से चलेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी को लोक संज्ञा कहते हैं, बहुत सरल भाषा में ये लोक संज्ञा के का अर्थ घटन है। लोगों की नजर में हमारा स्थान है वो बनाए रखना, वो स्थान गिरे नहीं लेकिन वो स्थान अच्छा से अच्छा बढ़िया से बढ़िया होता रहे। इस प्रकार के परिणाम हमें आत्मज्ञान करने नहीं देगा जो आत्मज्ञान जन्म मरण का नाश का कारण है। ओक संज्ञा मैंने विचार नहीं करना, अंधश्रद्धा से धर्म के विषय को धर्म की प्रवृत्ति को स्वीकार कर लेना उसको ओक संज्ञा कहते हैं। उसका विचार नहीं करना, सही समझ नहीं करना, बिना समझे मान लेना ये ओक संज्ञा है। पूर्ण रूप से सूक्ष्म रूप से तो वह सिर्फ बातें तंथली थी जो अभ्यासी लोग हैं वो कहां गलती कर लेते हैं शास्त्र कर्तव्य के लिए, और इन सक्षम मैंने जिसका संग हमें नहीं करना चाहिए, जिसके संग करने से हमारे परिणाम संसार वृद्धि के कारण होते हैं, ऐसे संग को और सत्संग कहते हैं। और सत्य का रस चढ़े, सत्य का प्रकाश हो, सत्य प्रगटपणे प्राप्त हो, प्रगट रूप से प्राप्त हो, ऐसे संग में जाना उसको सत्संग कहते हैं। तो सत्संग की रुचि है उसको असत्संग की रुचि नहीं होती, जिसको असत्संग की रुचि है उसको सत्संग की रुचि नहीं होगी। तो ऐसे कारणों में उदासीन रहना, और जिस जो संप्रदाय की रूढ़िगत क्रियाएं हैं उसमें भी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बिना समझे जो कुछ पूजा भक्ति यात्रा दया दान और उपासनादि जो भी व्रतादि करने में आता है तो उसमें सही मार्ग मिलता नहीं है। कि जन्म मरण के नाश का कौन सा मार्ग है, कौन सा उपाय है, कोई इलाज नहीं मिलता, इसलिए इसमें भी नहीं फंसना चाहिए। ये भी मार्गदर्शन यहाँ पर दिया है। अब क्या करना चाहिए आगे लेते हैं कल के स्वाध्याय का थोड़ा पुनरावर्तन करके। अब ऐसा निश्चय करना चाहिए आगे कि जिसको आत्मस्वरूप प्राप्त है, जिसको अपना मूल स्वरूप का प्रकट अनुभव है, प्राप्त है मैंने अनुभव ज्ञान है, प्रकट है जैसे जिसने आत्मगुणों को प्रकट किया है, आत्मा के सद्गुणों को जिसने प्रकट किया है, ऐसे पुरुष, ऐसा ज्ञानी पुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, इसके बिना दूसरा कोई यह आत्मस्वरूप यथार्थ कहने योग्य नहीं है। क्या कहते हैं, मूल बात पर आ जाए कि जन्म मरण के नाश का यानी सभी प्रकार के दुख के नाश का एकमात्र कारण हो आत्मज्ञान, ये मास्टर की है इसकी। दुख संसार में अनेक प्रकार का है, सभी के नाश का कारण कौन है? एक आत्मज्ञान। क्यों? आत्मा में जो आत्म सुख भरा है वो आत्मज्ञान से प्रकट अनुभव रूप होता है, पर सुख के अनुभव में दुख का अभाव हो जाता है, दुख उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसा निश्चय करना चाहिए कि ऐसा आत्मज्ञान कौन दे सकता है, कौन कह सकता है, कौन दर्शा सकता है कि जिसको उसका अनुभव है वही कह सकता है। शास्त्र पढ़ने वाला कहेगा ऐसा नहीं कहा इधर, कोई पंडित होगा, विद्वान होगा, वो हमको आत्मा दर्शाएगा, वो नहीं कहा। कौन कहेगा, कौन कहने के लिए समर्थ है कि जिसको आत्मज्ञान है वो अनुभव है वो? वैसे ही पढ़ाई की इतनी कीमत नहीं है, संसार में भी अनुभव की उतनी कीमत है। बाजार में तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है लेकिन अपने कारोबार में बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गए, अच्छी तरह से अपना पता कर सकते हैं। अनुभव ज्ञान है तो सबसे बड़ा ज्ञान है, बलवान है। तो यहाँ भी आत्मज्ञानी जो है वही आत्मा को बताएंगे, आत्मज्ञान कैसे हो सकता है वो यही बता सकता है, दूसरा कोई बता सकता नहीं है। दूसरी तरह से कहें तो कि ये भाव भ्रमण है और जीव को एक भाव रोग लागू पड़ा है अनादिकाल से। कब से? हमारा भूतकाल को देखा जाए तो अनंत अनंत काल से, जिसकी शुरुआत नहीं हुई है, ऐसा जिसका कोई संख्या का नाप नहीं कर सकते, इनफाइनाइट, उतना काल से हमारा आत्मा जन्म मरण होकर के दुखी हो रहा है इस संसार में। ये भवरोग अनादि से लागू है। इस रोग को मिटाने के लिए अनुभवी वैद्य चाहिए, डॉक्टर है वो अनुभवी चाहिए जिसको इसको मिटाने का अनुभव ज्ञान हो। कि ज्ञानी पुरुष का इस बात पर वजन नहीं आता, जिसके वचनामृत का हम स्वाध्याय कर रहे हैं कि श्रीमद राजचंद्र देव एक बहुत बड़े ज्ञानी हो गए और उसको हम बहुत कृपा करके उन्होंने इस उपदेश को अपने पत्र में दिया है, तो छोटे नाम से हम उसको कृपालु देव कहते हैं। बहुत वजन है इस बात पर कृपालु देव का कि आत्मस्वरूप जिसको प्राप्त है, मैंने अनुभव गोचर है, इसके बिना दूसरा कोई भी पुरुष उसको दर्शाने के लिए, इस रास्ता बताने के लिए कोई समर्थ नहीं है। एक अनजाना रास्ता है। भाव भ्रमण मिटाने का जो इलाज है ये बहुत अनजाना इलाज है। धर्म की प्रवृत्ति तो हजारों लोग करते हैं लेकिन ये इलाज नहीं जानते हैं, तो पुण्य बंधन में बांध करके पुण्य को भोगते हैं और पुण्य भोगते वक्त पाप बांध करके फिर पाप को भोगते हैं। जैसे दिन के पीछे रात और रात के पीछे दिन आता है, ऐसे पुण्य के भोगने के बाद पाप का उदय आए बिना नहीं रहता। संसार में पुण्य के भोगने वाले भोगते वक्त नया पाप का बंधन कर लेता है और उसी का फल उसको भोगे बिना चलता नहीं, भोगना ही पड़ता है। इसलिए आज पुण्य का उदय है तो कल पाप का उदय निश्चित रूप से आने वाला है ही। इस चक्कर में से छूटने के लिए जो कोई इलाज है, इस इलाज को ज्ञानी पुरुष बताते हैं, दर्शाते हैं। इसके बिना कोई दूसरा आत्मस्वरूप यथार्थ रूप से कहने योग्य नहीं है, और उस पुरुष से आत्मा को जाने बिना दूसरा कोई आत्मकल्याण का उपाय नहीं है। क्या कहा? आत्मकल्याण का उपाय उपवास करना वो नहीं है, ऐसा कहा। अब यह सब ले ले लेते, मंदिर जाना हो ये कोई आत्मकल्याण का उपाय नहीं है, और शास्त्र पढ़ना हो भी कोई आत्मकल्याण का उपाय नहीं है, या व्रतादि को ग्रहण करना ये कोई भी जब तक आदि करना हो तो भी कोई आत्मकल्याण का उपाय नहीं है, यात्रा करना होगी, दान देना होगी, आत्मकल्याण का उपाय नहीं है। एक ही उपाय में दूसरा सब नहीं है, ऐसा आ जाता है क्या?
छोड़ी छोड़ी दे यात्रा
कर, यथार्थ आत्मकल्याण का उपाय ग्रहण करके छोड़ दे तो भले ही छोड़ दे, ग्रहण करके क्या? यथार्थ उपाय ग्रहण करके अगर कोई छोड़ता है तो भले ही छोड़े, अनंत काल से नहीं छोड़ा है तो क्या लाभ मिल गया ये बताओ, और अनंत काल से नहीं छोड़ा है फिर भी उसको पकड़ कर रखना है तो क्या पाओगे ये बता, क्या मिलेगा वो बता दो, कि थोड़ा सा पुण्य मिलेगा, इसका उदय आएगा, उदय में पाप करेगा और पाप करके फिर दुख में चला जाएगा। अब इसमें से छूटने की बात है तो ऐसा भय डर रखने की जरूरत नहीं है कि ये सब छूट जाएगा तो हमारा मंदिर जाना छूट जाएगा, तो हमारा धर्म क्रिया करने का छूट जाएगा, तो ऐसा कोई भय रखने की जरूरत नहीं है। क्या कहना? कि ऐसे पुरुष से आत्मा को जाने बिना, यानी आत्मज्ञान के बिना, और सीधा आत्मज्ञान किसी को होता नहीं है, दर्दी खुद डॉक्टर नहीं बन सकता, उसको डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है, तो उसे आत्मा जाने बिना दूसरा कोई आत्मकल्याण का उपाय है ही नहीं। पर ये तो सामान्य बुद्धि से समझ में आ सकता है कि अगर आत्मकाल आत्मज्ञान से जन्म मरण छूटता है तो आत्मज्ञान कहां से मिल सकता है? कि जिसके पास आत्मज्ञान है वहां से मिल सकता है, ये तो बहुत सीधी साधी बात है। इतनी बात अगर हमें सम्मत हो गई कि सभी प्रकार के दुख और जन्म मरण टालने के लिए आत्मज्ञान ही चाहिए, तो ऐसे एक निश्चय में, इस प्रकार के डिसीजन के बाद ये फर्स्ट थॉट आता है अगर किसी को आता है तो फिर वो कहां से मिल सकता है, जो चीज हमें चाहिए वो कहां से मिल सकता है? कि जिसके पास हो उससे मिल सकता है, जिसके पास नहीं हो उससे मिलने का तो कोई सवाल पहला होता नहीं। तो इसलिए तो आत्मज्ञानी कौन है उसकी खोज किए बिना रह सकता नहीं। जैसे एक मरण का प्रसंग आता है उसके लिए कोई खास दवाई होती है, और ये जल्दी से मिले ऐसी परिस्थिति नहीं हो तो हम क्या करते हैं? कभी ऐसा खून की जरूरत पड़ती है कि जिसका कोई ब्लड ग्रुप नहीं मिलता हो तो सभी पेपरों में एडवर्टाइज निकालते कहते हैं कि एक मरीज को जीवन दान देने के लिए ये चाहिए हमें, अगर किसी को हो तो आ जाइए हमारे पास, किसी भी कीमत पे ले सकते हैं। खोज चलती है तो भी चलती है, आसमान से अगर कोई चीज लानी हो तो हमारा अभिप्राय में हमारी तैयारी है, या पाताल में से कोई वनस्पति लानी हो तो भी हम जाने के लिए तैयार है, ये अभिप्राय है कि नहीं है। कि कुछ भी कॉस्ट लग जाए हमको चाहिए, सो चाहिए, तो इस तरह से खोज चले कि हमें आत्मज्ञानी पुरुष को चाहिए, इसके बिना कोई निवेड़ा नहीं है, तो ये बात आए बिना रहेगी। उस पुरुष से आत्मा जाने बिना ग्रंथों से या अज्ञानियों से आत्मा जाना है, ऐसी कल्पना मुमुक्षु जीव को सर्वथा त्याग करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। इधर क्या लेते हैं कृपालु देव, के ऐसा इलाज खोजने के लिए ज्ञानी पुरुषों के लिखे हुए ग्रंथ भी मिलते हैं, अवेलेबल है, तो हम ग्रंथ पढ़ करके आत्मज्ञान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। जैसे हमारे यहां समय सारे बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, दिगंबर संप्रदाय के साहित्य में, जो शास्त्र के साहित्य है उसमें उसमें समय सार है, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है,
ग्रंथाधिराज
तो पढ़ करके आत्मज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कि हजार लोग पढ़ते हैं ऐसे तो कोई किसी को आत्मज्ञान नहीं होता है। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष से आत्मा जाने बिना हमने किसी अन्य प्रकार से आत्मा को जान लिया है, समझ लिया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, ऐसी कल्पना मुमुक्षु जीव को सर्वथा छोड़ देनी चाहिए, इस कल्पना में कभी नहीं आना चाहिए। भले ही ग्रंथ पढ़ते हो लेकिन हमको अपने आत्मा को जाना है, ऐसी कल्पना कभी करनी चाहिए नहीं, वरना एक नई विडंबना खड़ी हो जाएगी कि हमने जान लिया है, हम जानते हैं आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आत्मा आनंद स्वरूप है, आत्मा चेतन स्वरूप है, हमने जान लिया है, वो कल्पना करना नहीं चाहिए। यह आत्मा रूप पुरुष का अब क्या ज्ञानी पुरुष के लिए क्या बोले, कैसे कैसे विशेषण लगाते हैं ज्ञानी पुरुष को, यहां ज्ञानी पुरुष नहीं कह करके, सत्पुरुष भी नहीं कह करके, सद्गुरु भी नहीं कह करके क्या कहा? बहुत मार्मिक बात है। आत्मा रूप पुरुष, उसको आत्मा रूप पुरुष कहा है, तो स्वयं ही आत्मा है, जिसको आत्मज्ञान प्रकट है, प्रकट अनुभव को चले, तो ज्ञानी को आत्मा रूप पुरुष कहते हैं, क्योंकि तो जैसे आत्मा, जैसा आत्मा है वैसे ही इसमें उसका श्रद्धा ज्ञान चारित्र का परिणाम प्रकट चलता है, उस रूप हो गया है। कैसा हो गया है कि जैसा आत्मा है उस रूप हो गया है, दिखता है मनुष्य। देखो ऐसा ज्ञानी दिखता है तो मनुष्य, लेकिन यहां मनुष्य है, ज्ञानी है, सत्पुरुष से ऐसा नहीं कहते हैं, तो आत्मा रूप हो गए, जैसा आत्मा है उस रूप हो गए। ऐसे पुरुष का सत्संग की निरंतर कामना रख करके उदासीनपना से लोक धर्म संबंधी और कर्म संबंधी व्यवहार करना के जिससे फल स्वरूप से उससे छूट सके, इस हेतु से, इस इरादा से ये प्रवृत्ति करना। फिर से कहते हैं कि सत्संग तो निरंतर मिल सकता नहीं है, क्योंकि इस काल में ज्ञानी गुरु मिलना ही मुश्किल है। अगर कोई मिल गया तो एक दो हो सकता है, तो सबों को इसका कोई सत्संग निरंतर मिले ऐसी संभावना नहीं होती। तो तब क्या करना कि संयोग में रहने की, सत्संग में रहने की कामना निरंतर तो हो सकती है। सत्संग नहीं हो सकता है, लेकिन सत्संग की कामना भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। कामना तो जिसको जो चाहिए वो नहीं मिले तो उसको मिलाने के, जुटाने के परिणाम रहना, इच्छा रहना, कामना रहने तो बहुत सहज और स्वाभाविक होता है। ऐसी कामना में रह करके अब जो हमारे प्रारब्ध कर्म है, हमारे जो नसीब है, उसी अनुकूल हमारी बाह्य प्रवृत्ति होती है। उसमें दो प्रकार की लिंग रखी है, एक लोक धर्म संबंधी सामाजिक लौकिक रूप से जो प्रवृत्ति करनी पड़ती है, समाज के बीच में रहते हैं तो इस ढंग से रहना पड़ेगा। और कर्म संबंधी हमारे पूर्व कर्म का जो उदय आता है, अनुकूलता प्रतिकूलता अनेक प्रकार से, उस संबंधी जो भी व्यवहार करना तो उदासीनता से करना। उदासीनता से करना माने क्या, कि उसको गौण रख करके करना, मुख्य रख करके नहीं करना। या जो कहने का अभिप्राय है या वो है चेंज ऑफ प्रायोरिटी, प्रायोरिटी को बदल देना। लोक धर्म संबंधी और कर्म संबंधी हमको जो भी व्यवहार करना पड़ता है उसी को हम मुख्यता देते हैं तो हम आत्मकल्याण भी कर पाएंगे। और आत्मकल्याण की मुख्यता आई तो इसकी गौणता हो जाएगी, व्यवहार तो व्यवहार के रूप में हो ही जाएगा, थोड़ा कमी बेसी भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो गौण रूप से होना चाहिए। गौण रूप से होने से उससे हम छूट सकते हैं, उसकी मुख्यता रख करके हम उससे छूट सकते नहीं है। इसलिए उदासीनपना से लोक धर्म संबंधी और कर्म संबंधी व्यवहार करना के बीच से हम आखिर में परिणाम है मैंने आखिर में छूट सके, उसी प्रकार से ऐसा व्यवहार करना। तो ये सब क्यों कहा, उस प्रवृत्ति से छूटने की बात क्यों कही, कि इस प्रवृत्ति से एक दिन तो छूटना ही होता है। जब शरीर वृद्धावस्था में काम नहीं कर सकता है तो प्रवृत्ति छोड़नी पड़ती है, नहीं छोड़ना चाहे तो भी, पर आखिर में तो आयुष्य पूरा होते तो भी प्रवृत्ति के साथ में कोई ले जा सकते नहीं है। जब प्रवृत्ति छूटनी आवश्यक है, अवश्य छूटनी ही है, कभी भी छूटेगी ही, और ये बात तो हम टाल सकते नहीं है, तो हम दुख से छोड़े या सुख से छोड़े इसका विचार अभी से हमें करना चाहिए। छोड़नी तो पड़ेगी, जैसे ही भाई साहब को पैरा देख हो गया तख्त राज्य, अब क्या कर सकते हैं? क्या वो 10 साल पहले धंधा करते थे कलकत्ता में, उतना धंधा भी कर पाएंगे क्या, कर सकेंगे क्या? हाँ, लकड़ी लेकर करना पड़ता है और लड़के बड़े बड़े हो गए, कहेंगे कभी आपका काम नहीं है, पर माथा मारेंगे तो पसंद आएगा भी नहीं शायद, पर आएगा तो भी हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इसका निर्धारण हमें करना है, निर्णय तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये छोड़नी पड़ेगी। जो चीज छोड़नी पड़ती है उसमें किसी का नहीं चलता है, तो हम सुख से या दुख से किस हालत में इसको छोड़ेंगे, इसका विवेक विचार अब इसे करना जरूरी है। उस वक्त फिर नहीं कर पाएंगे, बहुत दुख होगा, बहुत दुख होगा, उतना दुख होगा कि प्रायः बहुभाग बेशुद्ध अवस्था में, मूर्छा अवस्था में जीव को सब कुछ छोड़ना पड़ता है, शुद्ध शांत रहता नहीं है, इतना दुख हो जाता है। तो दुख से बचने के लिए ये सब बातें हैं। सभी बात के पीछे क्या है, बात मूल बात क्या है कि दुख से छूटना है और सुख को प्राप्त करना है। ये सभी उपदेश का केंद्र स्थान ही यही है इस मार्ग में। तो इसलिए उदासीन रूप से गौणता से ये प्रवृत्ति करना, मुख्यता नहीं रखना, और इस गौणता करते करते इस प्रवृत्ति को छोड़ने में हमें कोई आकुलता नहीं हो गए, दुख नहीं हो गए, ऐसी परिस्थिति में हमें आ जाना चाहिए सुख छोड़ने के पहले। जो व्यवहार कार्य में जीव को अपना महत्व की इच्छा हो, ऐसा व्यवहार करना यथा योग्य नहीं है। क्या और एक शिक्षा देते हैं कि जिस व्यवहार कार्य करते हुए हमारा मान बढ़ जाता हो, क्या चार प्रकार के दुखदायक परिणाम को कषाय कहते हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। उसमें मान है वो सबसे भयंकर है। मान के लिए लोभ को भी छोड़ता है, माया भी कर लेता है और क्रोध भी जीव कर लेता है। ये सबसे बड़ा भयंकर रोग है। तो व्यवहार करते हुए भी अपनी महत्ता बढ़े ऐसा व्यवहार कहीं नहीं करना, अपना मान बढ़ जाए ऐसा व्यवहार नहीं करना। और समझने लायक चीज है, संसार में तो उल्टी बात है, बात बात में अपने बड़ापन दिखाएगा, हम ऐसे हैं, हमारा ऐसा है, कहते हैं कि अच्छा नहीं है। ये आत्मकल्याण के बहुत बड़ा अवरोधक कारण है, आत्मकल्याण में बड़ा ऑब्स्ट्रेकल ये खड़ा होता है जिसको मानते हुए होता है। इसलिए मान से बचना खास करके मनुष्य गति में इसका बहुत बड़ा रोग है कि मान मिलता है तो सब कुछ कर लेता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर, दो प्राइम मिनिस्टर का आयुष खूब खराब है, पूरा हुआ है, इंदिरा गांधी और उनके लड़का राजीव गांधी, क्या उसके पास पैसे की कमी थी क्या? अरबों रुपये उनके पास स्विट्जरलैंड के बैंक में पड़ा है, कितने हैं? अरबों के अरबों हैं, तो पैसे की तो कमी नहीं। अब क्या चाहिए उसको, मैं फलाना फलाना, इसके लिए जान की बाजी लगा देते हैं, पैसे को कितने भी इलेक्शन में खर्च कर देते हैं करोड़ों करोड़ों, लेकिन वो सीट के लिए कुर्सी के लिए जान की बाजी भी लगा देते हैं। क्यों? मान चाहिए तो उतना वो तीव्र कषाय है, तीव्र परिणाम है जीव का। और आत्मकल्याण के लिए सबसे बड़ा प्रश्न है वो है अपने आप का, भीतर में रहा हुआ कोई बड़ा दुश्मन है तो ये बात है। इसलिए यहां ऐसी शिक्षा देते हैं कि जिस व्यवहार कार्य करते हुए जीव को अपनी महत्ता अपना मान बढ़ जाए, ऐसी इच्छा रहा करती हो तो उस प्रकार के व्यवहार को छोड़ देना, क्योंकि ये इच्छा करने लायक नहीं है। ये एक इतना बड़ा दोष है कि इसके पीछे कितना दोष करना पड़ता है, कितना अपराध करना पड़ता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इतना बड़ा अपराध है, एक मान पोषण के लिए क्या क्या करना पड़ता है कि सब कुछ करने के लिए जीव तैयार हो जाता है और उस करने में इतने इतने अपराध होते हैं और ये दुर्गति के कारण होते हैं बिल्कुल। इसलिए ऐसा व्यवहार करना योग्य नहीं है। अब कहते हैं कि हमारा समागम का फिलहाल अंतराय जान करके निराशा को प्राप्त होना चाहिए, निराशा आएगी, समागम नहीं मिलेगा तो आपको दुख लगेगा, क्योंकि आप चाहते हो, हमारे संघ को चाहते हो। हो सकता है कि ये अभी बनने वाला नहीं है, उसमें अंतराय आ जाएगा, तो उसको जान करके, उस अंतराय को जान करके निराशा को मैंने डिप्रेशन में आ जाएंगे, तथापि फिर भी ऐसे होने में ईश्वर इच्छा जान करके क्या लिखा, ईश्वर इच्छा मैंने क्या अब इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, कि कुदरत की व्यवस्था देख करके, यानी हमारे प्रारब्ध की व्यवस्था देख करके, वो ईश्वर इच्छा है, हमने ही खड़ा किया है वो प्रारब्ध, दूसरे ने खड़ा नहीं किया है, ऐसा जान करके समागम की कामना रख करके तो सहज रह जाएगी, क्योंकि चाहते हैं इससे समागम की कामना तो बने रहेंगी। ऐसा रख करके क्या करना कि जितना हो सके उतना मुमुक्षु भाइयों को आपस में समागम करना। हमारा समागम नहीं मिलता है तो क्या करना चाहिए कि जो लोग इस मार्ग में आना चाहते हैं, इस मार्ग को ढूंढते हैं, खोजते हैं, ऐसे एक अभिप्राय वाले जो मुमुक्षु है उसको आपस में मिलकर के इसका विचार विमर्श करना चाहिए। उस विचार विमर्श को ही सत्संग कहते हैं, दूसरे कोई बात इसमें नहीं है। पीछे से क्या करना, यानी पुरुष के समागम में अंतराय पड़ता है, नहीं मिलता है और निरंतर मिलने का समय के लिए संभव भी नहीं है, तो उसके बाद मुमुक्षुओं को आपस में मिलकर के जो भी बात समझ में आई हो या समझना चाहते हैं उस पर हमें आगे विचार विमर्श करना चाहिए। हो सके उतना करना, हो सके उतना मैंने अधिक ज्यादा हो सके उतना करना, जितना हो सके उतना सांसारिक प्रवृत्ति में से विरक्तता रखना, विरक्तपना रखना, मैंने सांसारिक प्रवृत्ति करनी तो पड़ेगी लेकिन तीव्र रस से करना नहीं, इसको विरक्तता कहते हैं, मंद रस से करना, ये खास शिक्षा है। तीव्र रस से करने से ये जो आत्मकल्याण का मार्ग है उसमें सूझ आने में तकलीफ पड़ती है, और मंद रस से करने में हमारी जो मति है, बुद्धि है, वो आत्मकल्याण का मार्ग खोजने में अच्छी तरह काम कर सकती है, इतना अवकाश होता है। इसलिए प्रवृत्ति में विरक्त पड़ा रखना, सत्पुरुष के में ज्ञानी पुरुष के चरित्र और ज्ञानी पुरुष और मार्गानुसारी ऐसे दूसरे के जो हो गए सुंदरदास, प्रीतम, मखा, कबीर आदि जीवों के वचनों, वचन और उसके उद्देश्य, जिसका उद्देश्य आत्मा को मुख्य रूप से कहना है, ऐसे ग्रंथ विचार सागर, सुंदरदास के ग्रंथ, आनंद जी के पद, द्रासदास जी के पद, कबीर जी के पद, कथा भगत के पद वगैरह वगैरह, ब्रैकेट में सबका नाम दिया है, इस ग्रंथों के भी परिचय रखना। कैसे ग्रंथों का परिचय रखना, कि जिसमें मुख्य रूप से आत्मा दर्शाने का अभिप्राय है, ऐसा उद्देश्य जो ग्रंथ लिखा है, ऐसे ग्रंथों को पढ़ना। दो बात किया, एक आपस में सत्संग करना और एक सदग्रंथों का पठन करना या परिचय करना। और ये सभी साधनों में मैंने मुमुक्षु का संग और सदग्रंथ का परिचय, ये सभी साधनों में और दूसरे दूसरे कोई भी साधन हो, पूजा भक्ति वगैरह वगैरह जो भी हो, मुख्य साधन ऐसा श्री सतपुरुष का समाज उनको गिनना, ये बात को बार बार वो दोहराते हैं। इसलिए वो बात दोहराते हैं कि इस अनजाने मार्ग में कदम कदम पर भूल होने की संभावना बहुत है, इसलिए मार्गदर्शन मिलता है वो ऐसे अनुभवी पुरुष से मिलता है, और कहीं जगह जगह वो चीज मिलती नहीं है, और अपने आप से भी वो मार्ग मिलता नहीं है, उपाय मिलता नहीं है। तो ये छूटने का जो उपाय है, दुख से छूटने का उपाय है, जहां भी दुख होता हो प्रत्यक्ष समागम मिलता हो तो हम निवेदन कर सकते हैं कि ऐसे प्रसंग में हमको ऐसा दुख हो गया, ऐसा जो प्रसंग बन गया तो हम ऐसा दुख में आ गए, तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, क्या करें, कैसे करें, उसका जो मार्गदर्शन है। जैसे हॉस्पिटल में कोई गंभीर दर्द होता है तो उसको मिटाने के लिए अंडर स्ट्रिक्ट मेडिकल सुपरविजन उसकी ट्रीटमेंट चलती है, ऐसे ज्ञानी पुरुष के समाज में ये भावरोग मिटाने के लिए अच्छे से अच्छा मार्गदर्शन मिल सकता है। इसलिए सभी साधन में ये मुख्य साधन गिनना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा है। आगे और भी इस पत्र का शेष भाग रहता है, थोड़ा दो पैराग्राफ और है।
Oh.